This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaura Dhawan Lal and with me is my co-anchor Amit Goyal.
नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
जी शुक्रिया, थैंक यू.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ गौरा.
थैंक यू अमित एंड डॉक्टर शर्मा, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम.
थैंक यू मैम, थैंक यू.
A quick look at the headlines. Domestic benchmark indices end lower for second day. Sensex declined 721 points. Nifty settles below 24,850. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Maldivian President. And industry leaders hail landmark India-UK free trade agreement.
आर्थिक सुर्खियों में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार में गिरावट. सेंसेक्स में 721 अंक का नुकसान. निफ्टी 24,850 के नीचे दर्ज हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधि स्तर की बैठक की. दोनों देशों के मध्य चार सहमति पत्र और तीन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और औद्योगिक संगठनों ने भारत ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया. कारोबार की शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से. लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में शेयर बाजार में आज गिरावट का दौर रहा. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली और वैश्विक हलचल से बाजार में गिरावट हावी रही. मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% नुकसान से 721 अंक लुढ़ककर 81,463 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.9% के नुकसान से 225 अंक गिरकर 24,837 के स्तर पर बंद हुआ. बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.5% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.9% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई.
इक्विटी बेंचमार्क इंडिसेस द सेंसेक्स एंड निफ्टी क्लोज्ड इन द रेड फॉर अ सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन टुडे, वेट डाउन बाय मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज. इन्वेस्टर सेंटीमेंट रिमेन्स सबड्यूड amid continued selling by foreign and institutional investors and lingering global trade uncertainties. The 30-share BSE Sensex tumbled 721 points or 0.9% to close at 81,463. The NSE Nifty 50 also slipped sharply, losing 225 points or 0.9% to end the session at 24,837. The broader market indices at the BSE closed lower. The mid-cap index decreased about 1.5% and small-cap index fell 1.9%.
Sensex pack में 30 में से 28 कंपनियों के शेयरों में आज नुकसान दर्ज हुआ. गिरावट वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस 4.7%, पावर ग्रिड 2.6% और इंफोसिस लगभग 2.5% के साथ प्रमुख रहे. बढ़त वाले शेयरों में सनफार्मा 0.5%, भारतीय एयरटेल मामूली बढ़त बनाने में कामयाब रहा.
In sectoral indices at the BSE, 20 out of 21 sectors ended in the red. Among the top laggards, utilities shed 2.37%, power declined 2.36%, and oil and gas dropped 2.11%, except healthcare rose 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,893 companies declined, shares of 1,116 companies advanced, while shares of 145 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 42 companies hit their 52-week high, while 36 hit their 52-week low.
अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 12 पैसे की गिरावट से 86.52 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. डॉलर इंडेक्स बढ़त से 97.7 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. डॉक्टर शर्मा, बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, अगर साप्ताहिक तौर पर देखें तो काफी सप्ताहों से लगातार, अगर पूरे सप्ताह के आंकड़े देखें तो बाजार में गिरावट है. क्या उम्मीद निवेशकों की कहीं कमजोर पड़ रही है, वैश्विक परिदृश्य हावी हो रहे हैं, या जो कंपनी जगत के नतीजे हैं वो उम्मीद से काफी पीछे छूट रहे हैं, या सबका मिला जुला रुख है?
देखिए, ये सबका मिला जुला रुख ही है। एक तो जो ग्लोबल लेवल पे कुछ सेटलमेंट की हमें उम्मीद थी कि यूएस के बीच में और दूसरे इकोनॉमी के बीच में कुछ जो टैरिफ्स हैं वो सेटल हो जाएंगे, वो कुछ ही इकोनॉमीज के साथ हो पाई हैं, जबकि अगस्त एक हमारे बहुत ही नज़दीक है अभी, तो जिससे कि जो ट्रेड टेंशन्स हैं वो सेटल नहीं हुई है अभी। और ऊपर से ट्रंप साहब ने अनाउंस किया है कि जो टैरिफ्स हैं वो 15-50% तक हो सकते हैं, जिसका कि काफ़ी ग्लोबल ट्रेड के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होगा, सप्लाई चेन से इम्पैक्ट होंगी। लगभग कोई मेरे ख्याल से 150 कंट्रीज तो ऐसे हैं जिनका अभी कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ है टैरिफ्स में। तो एक बहुत बड़ा आने वाले टाइम में एक अनसर्टेनिटी फिर बनी हुई है। पहले ऐसी उम्मीद थी कि जब उन्होंने 90 डेज दिए कि शायद कुछ सेटल हो जाएगा, उसके बाद 90 डेज के बाद फिर थोड़ा टाइम दिया गया कि 1 अगस्त तक जो हम फिर पॉज लेते हैं कि अपने अपने जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो अपने फाइनल कर लें, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा रुख नहीं बना है जहां पे पूरा का पूरा जो ग्लोबल ट्रेड डील है वो सेटल हो जाए यूएस के साथ।
चलिए घरेलू बाजार के बाद नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पे। एशियाई बाजारों में आज गिरावट का दौर रहा। अमेरिका, जापान और यूरोप के केंद्रीय बैंकों के प्रमुख की महत्वपूर्ण बैठक के चलते निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। हांगकांग के हैंगसेंग 1.4%, जापान का निकेई 0.9%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.3% की गिरावट से बंद हुए। हालांकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.2% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मिला जुला दौर रहा। लंदन और जर्मनी के शेयर बाजार लगभग 0.5% तक की गिरावट के दायरे में नजर आए, जबकि फ्रांस के शेयर बाजार में मामूली बढ़त रही।
सो डॉक्टर शर्मा, एक्चुअली वी आर सीइंग दैट ग्लोबल फैक्टर्स इज व्हाट इंपैक्टेड द मार्केट, बिकॉज़ द इंडियन इकॉनमी इज गोइंग स्ट्रांग, यू नो, वी आर गोइंग अहेड, वी आर साइनिंग ट्रीटीज, द प्राइम मिनिस्टर इज ऑन गुड स्ट्रांग विजिट्स। सो व्हाट आर सम ऑफ दीस ग्लोबल फैक्टर्स?
Global factors are uncertainties, tariff uncertainties, because we were expecting that these tariffs will be settled in the 90 days, but thereafter again by 1st August. But still there are many challenges, that tariffs are not settled with many economies. And Mr. Trump has announced that they will impose 15-50% tariffs on the unsettled tariff countries. So that may cause a great disruption in the supply chains and cause some trade slowdown in the coming times. So that's why the markets are very, very cautious at this juncture. And second is followed by the some weak results of the big corporate in India. So that's why the markets are becoming more and more cautious for the coming times, that despite the strong fundamentals and settlement of the some trade agreements also with the UK, but still we are facing the challenges that some global uncertainties are hitting the market.
Right. Yeah. So you know, nothing strong to worry about. Basically, we are on a strong footing.
Yes, we are in a strong direction, because our exports, if we go by the numbers in the first quarter of the current financial year,
right,
our exports grew 6%, okay. 210 billion, as against 198 billion during the same period of last 24-25.
Right.
So despite global headwinds, despite the trade tussles or the Trump tariffs or the deepening geopolitical developments, we are very good in the external sector and growing significantly in the global export trajectory.
Right. So in more India-related global news, India and the Maldives today held delegation-level talks at the President's office in Malé. The talks were attended by Prime Minister Narendra Modi, Maldives President Dr. Mohammad Muizzu, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, National Security Advisor Ajit Doval, and other senior officials from both nations. Prior to the delegation level talks, Prime Minister Modi and President Muizzu held a bilateral meeting to discuss various issues of mutual interest. Earlier in the day, Prime Minister Modi was accorded a guard of honour at the Republic Square in Malé, where he was accompanied by President Muizzu. Prime Minister Narendra Modi has reached Maldives after his historic visit to the UK. In fact, India has extended 4,850 crore rupees line of credit to Maldives. The financial assistance is expected to fund key infrastructure and developmental projects across the country. An amendatory agreement was signed to reduce the Maldives' annual debt repayment obligations on previous Indian-funded line of credit. Both countries today signed 4 MOUs and 3 agreements. They are in the field of fisheries and aquaculture, digital solution and recognition of Indian pharmacopoeia. Now, Mr. Modi also handed over 3,300 social housing units. So, you know, Dr. Sharma, we see this. So there is, I think, a good flavor, good relationship. How do you see the Prime Minister's visit there?
Yes, this is very significant visit by our Honorable Prime Minister. Because we are building the capacities in Maldives. Actually, since the last many decades, we are providing great support to Maldives. Not only in some sectors, across the sectors, like we are building the education infrastructure, health infrastructure, digital infrastructure, then the defense and security infrastructure. All this support is provided by India, since, not only from the years, but since the last many decades. So with India-Maldives relations are, I believe, very strong, and we have a great complementarity also in the trade trajectory. We are exporting and importing, though the volume is very low because of the small size of the Maldive economy, but still the trade is very strategic and important for India and Maldives.
Right.
Dr. Sharma, Maldive ki agar samarik sthiti dekhen aur bhaugolik sthiti dekhen, to Bharat ke sabse nazdeek hote hue uska samarik mahatv bhi hai. Aur agar iske saath hum apne vyapar ko unke saath jod dete hain, तो ये कुल मिला के जो एक समायोजन बनता है वो कितना महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए, भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हिंद महासागर में, दूसरे साथ ही साथ अगर हम दोनों व्यापारिक समझौतों के तहत एक मजबूत गठजोड़ बना लेते हैं तो.
जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मालदीव्स के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालदीव्स के लिए इंडिया एक गेटवे भी है पूरा ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कनेक्ट, बिकॉज इंडिया इज द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी. हमारा जो एडवांटेज है, हम जो फास्टेस्ट रेट पे ग्रो कर रहे हैं, और इंडिया जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है, उसी तरीके से जो मालदीव्स को बेनिफिट मिल सकता है हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा गहरे संबंध बना के मजबूत होके, तो उसे उसकी इकोनॉमी को भी भरपूर लाभ होगा. बिकॉज मालदीव्स को क्या चाहिए? मालदीव नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सपोर्ट, infrastructure development in the education, health, all these things are provided by India during the last many years. So going forward, I believe the relations are expected to become more strong, as both are strategic points for each other, and India is providing every support to Maldives many times.
So Maldives ke saath.
Right. In fact, talking about these strong relations, you know, we have live Mr. Vikram Misri, and we'd like to take our audience over there. So let's listen to what he's saying.
...of President Muiz. Earlier this morning, on arrival at the airport, the Prime Minister was warmly received by President Dr. Muiz and members of his cabinet. At the airport, this was a very special gesture by the President. The Prime Minister was also accorded a ceremonial guard of honor and welcomed with a special cultural performance. In the afternoon today, the Prime Minister and President Dr. Muiz held restricted and delegation level talks. This gave both leaders the opportunity to review the entire gamut of issues in the bilateral relationship. They renewed various aspects of India-Maldives relations, and in particular reflected on the progress made since October 2024, when President Dr. Muiz had visited India on a state visit, and when both countries had adopted the joint vision for an India-Maldives comprehensive economic and maritime security partnership. You would already be familiar with, or you would have seen, the ceremony for exchange of memoranda of understanding and agreements between the two sides. Let me just review the key agreements and MOUs that have been signed. We have signed an MOU related to the extension of a fresh line of credit of 4,850 crore rupees to the Maldives. This is the first LOC extended to the Maldives that is denominated in Indian rupees. The LOC represents a continuation of the tradition of assistance to the development needs of the Maldives, and we expect that several infrastructure projects will be carried out as a result of this LOC agreement, benefiting the lives of citizens here in the Maldives. Together with this, the two sides also signed an amendatory agreement that amended the existing dollar line of credit between India and the Maldives, and I would like to in particular point to the fact that with the signature of this amendatory agreement, the annual debt repayment obligations of the Maldives will reduce by a sharp 40% from nearly $51 million annually to about $29 million.
भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर प्रमुख औद्योगिक संगठनों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे आपसी व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम बताया है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया ने समझौते से आपसी व्यापार को नई ऊंचाई पर पहुंचने का अनुमान जताते हुए कहा है कि ब्रिटेन को इंजीनियरिंग निर्यात में लगभग 12% तक बढ़त की उम्मीद है। समझौते को महत्वपूर्ण बताते हुए इंडियन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री के महानिदेशक डॉ राजीव सिंह ने भी कुछ कहा है, उसके पहले कुछ और चर्चाएं ले लेते हैं।
राइट, इनफैक्ट बिफोर वी रीच मिस्टर राजीव सिंह, वी हैव सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स ऑन हाउ द एफटीए हैज बेनिफिटिंग आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। सो द सेक्रेटरी जनरल एसोचैम मिस्टर मनीष सिंघल हैज स्पोकन, लेट्स लिसन टू हिम।
इंडिया यूके एफटीए आई थिंक इज अ लैंडमार्क एफटीए व्हिच इंडिया कुड साइन बिकॉज़ इट्स नॉट लिमिटेड टू सर्टेन प्रोडक्ट्स ओनली। It's also encompassing services. It's also looking at things like IPR protection, investments, and, you know, the whole gamut of aspects. That's why it's called the CETA. So it will give us a lot of benefit in terms of our manufacturing sector, especially the labor-intensive manufacturing sector like pharma and marine exports, leather exports, textile, garments. Plus, of course, it is also opening up market for our millets and some of the food processing products where the duties are being brought down to zero. So for India, definitely it's a good deal.
समझौते को महत्वपूर्ण बताते हुए इंडियन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री के महानिदेशक डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया,
सबसे पहले तो जो इंडिया यूके एफटीए कल दोनों देशों ने साइन किया, इसका आर्थिक और जियोपॉलिटिकल एंगल से काफी महत्व है। काफी सारे सेक्टर्स में इंडियन कंपनीज को यूके मार्केट में एक्सेस मिलेगा और उसमें से काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव हैं, मतलब जहां पे ज्यादा रोजगार पैदा होते हैं। टेक्सटाइल है, जैसे ज्वेलरी है, लेदर है, तो सभी सेक्टर्स में यूके का मार्केट खुला है। सर्विसेज सेक्टर में जो इंडियन कंपनीज के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ा है, से जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं और जो प्रोफेशनल्स का मोबिलिटी है यूके में, और सोशल सिक्योरिटी से जो एग्जम्पशन मिलने का बात वो सब हुआ है, तो इससे इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा मार्केट खुलता है। स्पेशली जबकि यूएस मार्केट में थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं और आईटी कंपनीज के लिए वो एक प्रोफेशनल्स के लिए रादर वो एक इशू भी रहा है, तो हर एक मायने में ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। और कृषि के क्षेत्र में भी एक काफी बड़ी विंडो खुलती है, और जैसे कि बांग्लादेश जो कि हमारे नेबर में है और उनके पास एडवांटेज था, बट कंसिडरिंग कि अभी जो सिचुएशन है उसमें इंडियन टेक्सटाइल और गारमेंट कंपनीज के लिए यूके एक बहुत बड़ा मार्केट है। सो दीज आर माई
So, Dr. Sharma, this is good news, definitely. And I think in terms of how we are seeing the relationship go forward, in commerce, in commercial terms, agriculture, this is a sector we're really wanting to be focusing on. Your views?
Yes, agriculture is very important for the Indian economy, as agriculture is our backbone and providing great support to our rural economy. So we are getting more than 90% access in the agriculture products in the UK market. So that is the great news, I believe, for the farmers, as they will be accessing a great market in the US agriculture economy. And I believe this is a win-win situation for both the economies, as this is called the historic FTA. In the trajectory of FTAs in the global economy so far. So this is the, I believe, one of the most important FTAs, not only Indian economy, but in the global economy, because the two respected democracies have entered in a very respectful FTA after so many negotiations. That is a win-win situation, not only for the both economies, but for the global economy. In the era of such kind of tussles, I believe the trajectory is expected to expand many fold in the coming times.
Right. डॉक्टर शर्मा, भारतीय सरकार, भारत सरकार ने लगभग इसके लिए काफी प्रयास किए, लगभग 3 साल का समय लगा इस समझौते तक पहुंचने के लिए. और अगर ऐसे में जैसे कि भारत से इंजीनियरिंग का व्यापार निर्यात खासतौर पे तकरीबन 12% बढ़ने की अगर उम्मीद जताई जाती है, ये कितना महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अभी तक हम इस तरीके की जो विशेष तकनीक या टेक्नोलॉजी होती थी उसको इम्पोर्ट करते थे. अगर हम वहां से एक्सपोर्ट करते हैं और इस तरीके का हमको एक बड़ा बाजार मिलता है, तो वो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, हमारे जेम्स एंड ज्वेलरीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो आपने बताया ही है, टेक्सटाइल के लिए, ये कितना बड़ी संभावनाओं का द्वार खोलता है.
देखिए, मैं इसको कहूंगा कि एक ये हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू है, जैसे मैंने बताया, तो जिसमें हम लगभग कोई 90% से भी ज्यादा जो टैरिफ लाइन्स हैं उनमें एक्सेस ले रहे हैं. 100 के करीब ही हमें मार्केट एक्सेस मिल रही है. जो जो भी हमारी ट्रेड बास्केट में है, जो भी हमारी एक्सपोर्ट किटी में है, वो सब चीज़ों को हमें एक्सेस मिल रही है आने वाले 5 साल में, और उसके बाद फिर 10 साल तक जो टैरिफ्स हैं वो स्लोली स्लोली कम होते चले आए. और जैसे आपने बताया कि 3 साल लगे, तो एक बहुत ही हेल्दी डेवलपमेंट है, जिसमें हमने सब कुछ नेगोशिएट करने के बाद हम इस अंजाम पे पहुंचे हैं कि एक FTA जो मायने, जो असल में एक मायना रखता है अपना ग्लोबल इकोनॉमी में, हमने कुछ इसमें हरी में नहीं किया है. हमने इसमें हर एक एस्पेक्ट को, दोनों कंट्रीज के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो फार्मर्स हो या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर सर्विसेज सेक्टर में हो, तो सबके हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसमें एग्रीमेंट किया है, जो कि विन विन सिचुएशन सभी के लिए है. और दूसरा, इससे जो एक फायदा, जो आपने जैसे बताया कि ट्रेड जो है आने वाले 5-6 साल में डबल होने की पूरी संभावना है, उसके बाद ट्रेड मैनीफोल्ड इंक्रीज होगा. दोनों देश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बट ट्रेड इज रिस्ट्रिक्टेड टू $21-22 billion ओनली. तो हमें क्या चाहिए कि इस ट्रेड ट्राजेक्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए हमें अपने जो मैं कहूंगा कि फ्लड गेट्स खोलने का जरूरत थी. दोनों ही प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, इंडिया फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी है, तो हमारे जो सेक्टर्स हैं, खास करके जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, जिसमें टेक्सटाइल्स है, फुटवियर है, ज्वेलरी है, फर्नीचर है, ऑटो पार्ट्स हैं, केमिकल्स है, मशीनरी जैसे आपने अभी मेंशन किया, तो ये सभी सेक्टर्स को एक बहुत बड़ी एक्सेस जो है यूके मार्केट में मिलेगी. मेरे ख्याल से कोई ऐसा बहुत ही कम ही टैरिफ लाइन होंगे जो इस एग्रीमेंट में नहीं होंगे. लगभग कोई 100% के आसपास ही हम अपनी एक्सपोर्ट किटी में एक्सेस ले रहे हैं.
Right, another area we are looking forward to, Dr. Sharma, is the job creation potential. Mr. Mohit Singla, the chairman of the Trade Promotion Council of India, has spoken on this.
It is a very, very pivotal moment as we celebrate India and UK signing a free trade agreement. Very, very difficult indeed an agreement, because it has taken more than 10 years to be negotiated. And there have been so many areas of discussion, and the both countries took a lot of time to agree to these aspects of negotiation. So as we look at this agreement closely, two very big areas that are worth mentioning that I would like to talk about here. First being the Indian companies who have invested in UK would now be able to invite Indian employees to work for these companies and not pay for 3 years the social security taxes. Now, it's a very, very big thing, big achievement for India, as we look at, as so many Indian companies are looking at UK as a very lucrative destination for investments. And the Indian employees who work in these companies will now be able to work in UK and not pay these taxes, which will help them save a lot more money that they used to do earlier. And that apart, when we talk about goods exports, we are looking at 0% tariff duty on almost 99% of the tariff lines. That's a very, very big achievement. We are looking at a huge surge in imports for food and beverages, labor-intensive sectors such as handicraft, textiles, leather, engineering products, And also we would see a lot of increase in the marine export, so be it shrimps, fish and other marine products.
डॉक्टर शर्मा, फिर से इस बात पे आऊंगा. इस तरीके के अगर समझौते होते हैं तो दो बड़ी भारत का यूरोप में के एक प्रमुख देश पे सीधी सीधी पहुंच बढ़ जाती है और भारतीय व्यापारियों के लिए, खासतौर पे हम अगर बात करते हैं एमएसएमई उद्यमियों के लिए, ये कितना महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और उनके लिए कितना बड़ा आकाश खुलने की उम्मीद इससे जगाई जा सकती है.
देखिए सर, अगर हम इसके टॉप 10 सेलिएंट फीचर्स देखें तो उसमें एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को एक खास जगह दी गई है.
जी,
एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स, उनके लिए मार्केट एक्सेस और उनके लिए इनोवेशन डेवलपमेंट, ये सब चीजों को इसमें तय किया गया है. जैसे एमएसएमईज हैं, खास करके उनके लिए मार्केट एक्सेस होना बहुत जरूरी है और उनके लिए जो कस्टम प्रोसीजर्स हैं वो और ज्यादा सिंप्लीफाइड हों, उस बात की चर्चा इस एफटीए में की गई है और उनको फैसिलिटेट किया गया है. बिकॉज वी आर एमएसएमई डोमिनेटेड कंट्री, वी हैव मोर देन 90% ऑफ अवर कंपनीज अंडर द सेगमेंट ऑफ एमएसएमईज, सो वी हैव डिमांडेड अ ग्रेट एक्सेस ऑफ अवर एमएसएमईज टू द यूके मार्केट, दैट इज एग्रीड. And now our MSMEs will be getting more and more access in the UK market, and they will be more and more connected with the global supply chains. So that is a great aspect of this FTA that supports specifically the MSMEs and the startups. So I believe this is a great support to the MSMEs in India to become more and more robust in the global economic and export trajectory.
Right. So here we are saying that agriculture, MSMEs, job creation, all have been on India's ask list, you know, across and for our own development also. So actually a win-win, and I think it looks green ahead.
Yes, not only the MSMEs or the startups or the agriculture or the labor-intensive sectors, but the professionals also, students also.
Right.
Professionals will be getting more access in the UK market. And with the ease of visa and the expansion of visa services, then the students can also export and the degrees will also be recognized. So I think this is the broad-based FTA which India has signed since the last many decades. This is one of the most important FTA which helps India's each and every segment, not only one industry or other agriculture, right, but across the sectors, this FTA will be helpful to enhance the particular segment of
as
that.
As you shared, yeah, it's well-rounded, well-thought, yes, of, lot of detailing and number of years have gone into this.
Right.
Let's listen. PhD Chambers of Commerce Mahasachiv Ranjit Mehta ne is samjhote ke baare mein kya kaha.
ये जो भारत और यूके के बीच जो एफटीए साइन हुआ है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव कदम है. इसमें हमारे जो 6.5 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं हमारे देश में, स्पेशली जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में हैं, आईटीआईटीएस में हैं, उनको एक बहुत बड़ा डेवलप्ड इकोनॉमी का मार्केट, जो कि $4 trillion का मार्केट है, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी में उनको एंट्री मिलेगी. इसमें करीब 99% ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जो कि ड्यूटी फ्री हो गए हैं, तो हमारे एमएसएमईज के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. और
चलिए नजर डाल लेते हैं सरफा बाजार में 24 कैरेट सोना 0.6% के नुकसान से 98,590 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 0.3% के नुकसान से 114,960 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. डॉक्टर शर्मा, बहुत संक्षेप में, सोने और चांदी की चमक अभी निवेशकों के लिए कितनी महत्वपूर्ण बनी हुई है, खासतौर पर वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए?
बहुत महत्वपूर्ण बनी हुई है और आने वाले टाइम में बहुत चमक लेके आने वाली है, मैं ये समझता
हूं. ऐसा कहा जाता है कि सोना दिवाली के समय सोना और ज्यादा चमक जाता है
और जैसे यूएस के जिस तरीके से अभी पॉलिसी चल रहे हैं तो उसमें चमक और बाकी मेरे को नजर आ रही है.
डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद. और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
Absolutely, a golden note to end the program on. Quick look at the headlines. Domestic benchmark indices end lower for second day. Sensex declined 721 points. Nifty settles below 24,850. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Maldivian President. Both countries signed 4 MOUs and 3 agreements. And industry leaders hail landmark India-UK free trade agreement. And that's all in today's program. Namaskar. Market Hunter.